फिर इसके बाद आयत 90 से 104 में जहन्नुम में गुमराहों की आहुजारियां। इसको पढ़ते वक्त बिल्कुल ऐसे लगता है कि इंसान किसी इमरजेंसी वार्ड में चला गया और वहाँ से लोगों की जो बातें हैं दुख की, बीमारियों की और तकलीफ़ों की वो सुन रहा है। अभी आपके मेरे लिए बस इसमें इतनी बात काफ़ी है कि जो सारी ज़िंदगी शिर्क करते रहे, अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारते रहे, जहन्नुम में जाकर चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, तल्लाह ही इन कुन्न लफी दलाली मुबीन, इस नुसवी कुम भी रब्बिल आलमीन, वमा दल्लना इल्लल मुजरिमून, वमा लना मिन शाफीन। आपको तो उर्दू में भी समझ आ रहा होगा, बहुत सारे लफ्ज़ उर्दू वाले ही हैं, यानी जहन्नुम में आहें होंगी, लोगों को पकड़ पकड़ कर खींच रहे होंगे, उनके गिरेबानों से थाम रहे होंगे, अरे भाई हम तो तुम्हारे नाम पे नजरों न्याज दे रहे थे, हम तो तुम्हारी कब्रों पे जाके बैठते थे, हम तो नफ़ा नुकसान तुमसे मांग रहे होते थे, आज हमारी मदद करो। लेकिन वहाँ कोई मदद नहीं कर सकेगा। अल्लाह हम सबको शिर्क और उसकी कबाखतों से बचा दे। आगे 105 से 122 में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बेलौस दावत है। हर नबी की दावत बेलौस है, और याद रखिए ये काम होता ही उस बेलौस होने वाले से। जब आप अजर मांगते हैं या माल मांगते हैं, या आपको इसके बदले में कोई तोहफे तहाइफ चाहिए, कोई गिफ्ट चाहिए, कोई इज्जत चाहिए, तो इस काम की चाशनी, शरीनी और तासीर भी ख़त्म हो जाती है। तो हज़रत नूह का किस्सा पीछे भी बहुत दफ़ा आया, 950 साल तक इतने बैड रिस्पॉन्स के बाद काम करना, ये सिर्फ उसी बंदे से मुमकिन है जो अल्लाह के लिए कर रहा हो। तो अल्लाह ताला ने उसको बताकर उनका तذکرہ करके हर एक को क़यामत तक दीन की दावत देने वाले को तसल्ली दे दी कि रिजल्ट्स तुम्हारा दीन नहीं मांगता। देखिए हमारा इस्लाम एफर्ट ओरिएंटेड है, रिजल्ट्स ओरिएंटेड नहीं है। कोशिशें क्या की जा रही हैं इस पे अजर है, नतज क्या निकले इस पे कोई अजर नहीं, वरना तो हज़रत नूह कामयाब भी ना हुए। फिर आगे एक और नबी हैं हज़रत हूद, इनकी बेगरज दावत का तस्करा है आयत 123 से 140 में कि इस कौम ने भी अपने नबी की बात को नहीं माना, ये भी बेलौस थे, ये भी अल्लाह की तरफ बुलाते थे, इन्होंने भी लोगों को क्या कहा था, इन्नी अखाफ अलैकुम अज़ाब यौम नज़ीम, मैं तुम पर एक बहुत बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ। यानी हर नबी की दावत में आपको बेगरजी दिखेगी, और आगे हज़रत सालेह की पुरखलूस दावत, यानी एक ही बात हर नबी के नाम के साथ है, लफ्ज़ों का थोड़ा बहुत फ़र्क है। 141 से 159 को देखिए, कज़्ज़बत समूद उल मुरसलीन, समूद ने भी मुरसलीन को झुठला दिया। एक को झुठलाया था, यहाँ जमा क्यों है ये पूरी सूरत में अंदाज़, तो अभी यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप देखिए जिसने एक रसूल का इनकार किया उसने सारों का इनकार किया। उलमा इसी से आज ये भी बात रखते हैं कि जिसने दीन इस्लाम की किसी एक चीज़ का जानबूझ के इनकार किया उसने सारी चीज़ों का इनकार किया। अल्लाह आपको मुझे बचा कर रखे। फिर आगे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की पुरसोस दावत है, गम में और दर्द में और दुख में डूबी हुई दावत है, 160 से 175, कज़्ज़बत कौम लूतिल मुरसलीन, इस क़ाल लहुम अखूहुम लूतुन अला तत्तकून। आप देखिए कि आज का बहुत बड़ा फितना यही है, अपेरेंटली नई नई बात जिसको कह लें कि हर तरफ से हवा दी जा रही है, वो यही फितना है। अपनी नस्लों को इन सारी गंदगियों से बचाने के लिए इस वक्त माँ बाप को आंखें खोलने की ज़रूरत है। रिएक्शन जो होता है या जो लोग आपके साथ कर रहे हैं उस पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। बाहर की दुनिया में रहने वाले अगर इस वक्त गूंगे शैतान बन जाएंगे तो अगले चंद सालों बाद ये पूरे दुनिया बल्कि मुस्लिम मुल्कों में ये झंडे लगे होंगे। अल्लाह ताला बचा कर रखे। फिर इसके बाद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की खैर ख्वाहंदखाना दावत है 176 से 191 में। माली बिगाड़ का शिकार ये कौम थी, और आज अगर आप देखें ना तो यूनिवर्सली दो चीज़ें मुसल्लत हैं, एक तो बेहयाई न्यूडिटी और दूसरा माली मामलात में सूद और उससे मुतल्लिकात। ये अंबिया कराम के किस्से हमारे लिए कोई स्टोरी से ऐसे नहीं है कि वक्त गुजारी है, नहीं, इसलिए कि तुम इससे समझो कि जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की कल उनके साथ क्या हुआ और आज भी क्या होगा। फिर इसके बाद 192 से 197 में साबिका आसमानी किताबें कुरान की अजमत पर दलील हैं। आप देखेंगे कि सूरतों के एंड पे ऐसी बात आने लग जाती है कि जिसमें कुरान पाक को सच्चा कराया जाता है, और यहाँ ख़ास तौर पे अब थोड़ी सी बात शायरी पे होगी। नबी सल्लम से जो कलाम सुनते थे उसमें कशिश बहुत थी, आज भी आप एक अच्छी आवाज़ में कुरान सुने तो आपके कान खड़े हो जाते हैं, कहते थे ये शायर हैं, कभी कुछ कहते कभी कुछ। कोई हज़रत जिब्राइल पे एतराज़ करता, अल्लाह कहते नवइन्नहु लतनज़ीलु रब्बिल आलमीन, ये तो रब्बुल आलमीन का नाजिल करदा है। नाजल बिहि रूहुल अमीन, इसको तो रूहुल अमीन के ज़रिए नाजिल किया जाता है। अला कल्बिक लितकूना मिनल मुनज़िरीन, आपके दिल पे ताकि आप डराने वाले हों। बिलिसान अरबी मुबीन, इसकी ज़ुबान अरबी है। इन्ना व इन्नहु लफी ज़ुबुरिल अव्वलीन, इसका तذکرہ पिछली किताबों में भी था। अवलम यकुल लहुम आया, क्या नहीं आई उनके पास कोई निशानी? क्या अय्या लमहु उलमाओ बनी इसराइल, के इनको सिखाते या इसको वो जानते जो उलमाए बनी इसराइल कहते थे। ये है जी कुरान का तारुफ। फिक्ही किताबों में अगर कोई आपसे एक सवाल कर देता कि कुरान का तारुफ कीजिए, तो ये सारी आयतें उलमा लिखते हैं कि कुरान का मुकम्मल तारुफ ये है कि ये रब्बुल आलमीन से आया, जिब्राइल के ज़रिए आया, आपके दिल पे उतारा गया। मकसद नज़ूल लोगों को इंतज़ार था और अरबी ज़ुबान में था, और इसका तذکرہ पिछली किताबों में भी था। फिर इसके बाद 198 से 209 में कुरान पर ईमान न लाने वालों का बुरा अंजाम बताया जा रहा है। वलौ नज़्ज़लनाहु अला बाज़िल आज़मीन, अल्लाह के नबी पे एतराज़ बहुत थे ना, आप पे क्यों उतरा, इस पे क्यों नहीं उतरा, ये नहीं हुआ, वो ना हुआ। अल्लाह कहते वो तो अल्लाह ने करना था, तुम्हें ये बता देते हैं कि अगर तुम इसको नहीं मानोगे तो क्या होगा। मा अग़नानहुम मा कानू युमत्तऊन, फिर कोई चीज़ जो दुनिया में इनके पास थी वो इनको फ़ायदा नहीं देगी, और जैसे पिछले हलाक किए गए ये भी हलाक हो जाएंगे। और कज़ाली का सलक ना हो फी कुलूबिल मुजरिमीन, ये भी आयत नोट करें 200, कि कुरान मुजरिमों के दिलों में सुलाखें बन के घुसता है, यानी जुर्म के साथ बैठे हों, कोई जुर्म किया और बैठे हों तो कुरान सुनने को दिल नहीं करता। कुरान हकीम किसी काहिन का कलाम नहीं है। ये आयत है 281 से 210 से 223। अल्लाह के नबी पर जो इल्ज़ाम था कि आप काहिन हैं, उसका जवाब देकर क्या बता दिया कि ये शयातीन नहीं लाते, उनको तो इसकी ताकत भी नहीं, वो तो इसको सुनने से भी दूर कर दिए गए, लिहाजा सुन लो कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है। फिर इसमें वो आयत आ रही है 214, अगर आप नोट करना चाहें, जिसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान को दावत देनी शुरू की, खुल्लम खुल्ला उनको खाने पे बुलाया। वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, करीबी रिश्तेदारों को भी बताइए, यानी कि दूसरों को बता रहे हैं और अपनों को नहीं बता सकते। और इसी हिस्से में आपको अब शायरी की भी चंद बातें मिल रही हैं। हल नब्बियुकुम अला मन तनज़्ज़लु शयातीन तनज़्ज़लु अला कुल्ली अफ़्फ़ाक नसीम, यानी शायरी की बात करते वक्त अगली आयतों में 224 से 227 में मजमून अच्छा तो शायरी अच्छी। पोइट्री की क्या हैसियत है इस्लाम में, आपके लिए ये आयात बहुत उसके लिए अहम है। अल्लाह कहते हैं बस शुआराओ यत्तबिहुमुल ग़ाबून, शायर जो हैं वो उनका पीछा तो भटके हुए लोग करते हैं। क्या पता चला कि अमूमन शायर वो बातें करते हैं जो कहते नहीं। वअन्नहुम यकूलून मा ला यफ़अलून, अब सवाल यह कि शेर व शायरी का इस्लाम में क्या मुकाम है। अच्छे मजमून वाली शायरी अच्छी है, बुरे मजमून वाली बुरी है। किस शेर व शायरी की इजाज़त कुरान देता है, यानी शायरी जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। हसान बिन साबित शायरी करते थे, क्या नात पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। क्या हम्द कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ शराइत देख लीजिए। पहली बात है कि शायरी वाज और नसीहत वाली हो। दूसरी बात क्या है कि सदाकत पर मबनी अशआर हो, झूठ ना हो, मुबालगा ना हो। अक्सर गानों में देखिए महबूब की जुल्फ़ों की बातें, और उसको नाउज़ुबिल्लाह शिर्क तक कर दे दिया जाता है, अल्लाह से भी ऊपर ले जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। फिर तीसरी बात है पुर हिकमत अशआर हो, हिकमत वाली बात हो। और फोर्थ पॉइंट क्या है कि इस्लाम की सरबुलंदी के अशआर, यानी मिल्ली नगमे जिसको कोई कहता है, या अगर इस्लामिक सॉन्ग्स कहता है, नशीद कहता है, उसकी इजाज़त है। फिर सबक आमोज शायरी हो और इसी तरह से फ़ायदेमंद हो, और साथ ही साथ ये है तौहीद और इस्लाह पर मबनी हो। जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो बंदे को समझ आ जाती है कि शायरी जायज़ है। फिर इसी तरह से आप देखिए वो शेर व शायरी जिसकी इजाज़त नहीं है वो क्या है। नंबर एक, जिससे दीन का नुकसान हो और जिक्र से गाफिल करने वाले अशआर, नमाज नहीं पढ़ रहे, रोज़े नहीं रख रहे और गाने सुन रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, शायरी है और बैतबाजी के मुकाबले हैं। अब आप इतने हो गए, इसको लाहवल हदीस भी कहा गया। फिर पुरतकल्लुफ अशआर ना हो, क्लबे मिलाना, इधर की बात उधर, उधर की बातें इधर उधर। फिर चौथी चीज़ है कि इश्क की और बेहुदा कलाम जायज़ नहीं है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो जाए अगर इस एक कानून पे, एक इस हुक्म पे अमल होने लगे। फिर झूठे बातिल की अमेजिश वाले अशार पसंदीदा नहीं है, बेकार बेफायदा कलाम वाले अशार पसंदीदा नहीं है, और सबसे बड़ी बात है टाइम वेस्टर, वक्त का जिया। आज भी आप देखिए इस इंडस्ट्री पे करोड़ों लग रहा है और लोग अपनी ज़िंदगी के कीमती से कीमती औकात ज़ाया कर रहे हैं। तो फिर शेर का असल हुक्म क्या है, यानी शेर व शायरी क्या है? तो नोट कर लीजिए कि शेर एक कलाम है, अच्छे शेर अच्छे कलाम की मानिंद है और बुरे शेर बुरे कलाम की मानिंद है। ये इमाम शाफी रहमहुल्लाह का कौल है। तो फिर सूरत शोरा के एंड पे जो मैसेज है वो क्या है कि अपनी इतनी कीमती ज़िंदगी को बेकार चीज़ों में इस्तेमाल न करो। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सूरत शोरा पूरी हुई, यहाँ सूरत शोरा पूरी हुई, और इसमें अब सूरत नमल की इब्तदाई आयात भी है। नमल चींटी को कहते हैं, इसकी 59 आयतें सूरत में हम पढ़ने वाले हैं अभी। और चींटी जैसी इतनी छोटी मखलूक का तذکرہ कुरान में। पीछे आपने सूरत नहल पढ़ी शहद की मक्खी, तो ज़रा देखेंगे जाकर आगे कि आखिर सूरत में चींटी का क्या तذکرہ है। पहली 6 आयात में ईमान बिल आखिरा की अहमियत है। मक्की सूरतों में अमूमन ऐसा ही होता है, या तौहीद की बात होती है, या रिसालत की, या कुरान पाक की बात होती है, और इसमें ख़ास तौर पे मोमिन का जाहिर और बातिन एक जैसा होता है। अल्लाह की नज़र है आपके दिल पे दिमाग पे, तो फिर आपको अपने आप को बेहतर से बेहतर करना है। फिर इसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आयत 7 से 14 में हज़रत मूसा पर ज़हूरे नबूवत, फिरौनियों का जुल्म और तकबर, यानी वही हज़रत मूसा की स्टोरी इन अ नटशेल है कि जो पीछे हम पढ़ चुके उनका तस्कर है। फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आयत 15 से 18 पे पहली दफ़ा हज़रत सुलेमान का तस्करा आ रहा है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर जो अल्लाह के फजल थे उसका तस्करा है। यहाँ भी थोड़ा समझिए कि हज़रत सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में से ही थे, लेकिन इनके दौर में खुशहाली थी। अमूमन पहले का दौर तो ग़ुलामी का या गुरबत का था ना, तो ये वो सिंबल्स हैं कि दीन और दुनिया दोनों की दौलतें भी किसी को मिल सकती हैं। असल में ये आयात पैसे वालों को इस गिल्ट से निकालने वाली हैं कि अब तुम्हारे पास चूँकि पैसा है तो अब तुम तो गुनाहगार हो। देखिए हमें ये भी एक बहुत मिसकॉन्सेप्शन दिया गया कि गरीब बड़ा ही नेक और अमीर बड़ा ही जहन्नमी और अंदर हसद है, ऐसा नहीं है। हज़रत सुलेमान को तो अल्लाह ने माशाल्लाह क्या कुछ दिया, परिंदों की बोलियां भी जान लेते थे और जिन्नात को भी मसख़र कर दिया था अल्लाह ने। और यहाँ वो वाक़िया जिसकी वजह से सूरत को गालिबन सूरत नमल कहते हैं, हत्ता इज़ा अतौ अला वादि नमली क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमल। 3 दफ़ा देखिए एक ही रूट के साथ बात है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्करों के साथ कहीं जा रहे थे, रस्ते में चींटियों की कोई फ़ौज थी, उनको डर हुआ कि हज़रत सुलेमान और उनका लाओ लश्कर इनको ज़मीन पे बेदेहानी में कुचली ना दें। तो वह एक चींटी ने दूसरी चींटियों से कहा कि जल्दी जल्दी पीछे हो जाओ कहीं ये तुम्हें कुचल ना दें। अब हज़रत सुलेमान अल्लाह के दिए हुए इस सारे इल्म पे उसकी आवाज़ सुनकर बात समझ गए। तो क्या हुआ, फ़तबस्सम दाहिकन, आयत 19 में हज़रत सुलेमान की दुआ आ रही है, चींटी की बात सुनकर मुस्कुरा उठे। आज भी बच्चा छोटा सा कोई अच्छी बात करे तो बंदा हंस पड़ता है ना, तो उसी तरह की बात इधर आती है कि छोटी सी मखलूक है और कैसे अपनी जान की फिक्र इसको पड़ी हुई है। काला रब्बी औज़ेनी अन अशकुर नेमतक अल्लती अनअमता अलैया वला वालिदैया वना अमल सालिहन तरदाहू वअदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन। ऐ मेरे रब, मुझे कैद कर, मुझे पकड़, यानी मुझे अपने काबू में रख और साथ साथ तौफीक भी दे। सारी मानी है इसमें मुराद है कि अल्लाह मुझे इस बात की तौफीक दे कि मैं तेरी उस नेमत का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पे और मेरे माँ बाप पे दी, मेरे माँ बाप पे जो नेमतें, और मैं अच्छे काम भी करूँ जो तुझे अच्छे लगें, और मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में दाखिल कर दे। क्या पता चला कि अंबिया कराम की ये दुआएं हम सब के लिए भी हैं। हम इसमें अपनी और अपने माँ बाप की अच्छी कोशिशों और अच्छे कामों के बाद अच्छे लोगों में दाखिल होने की दुआ करते हैं। फिर इसके बाद आगे किस्सा है एक मलका का जिसका नाम था मलका सबा, आयत 20 से 44 में, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ ये किस्सा जुड़ा हुआ है। इस सारे का ख़ुलासा क्या है, अगर आप 26 के बाद आगे भी देख लेना तो 27 से 35 में, तो क्या पता चलता है कि मलका मुशरिक थी लेकिन दिल में हसद नहीं था और मान गई। और हज़रत सुलेमान की तरफ से जो ख़त गया था तो उसको लेकर एकदम ही उस मलका ने कोई रिएक्शन शो नहीं किया, तो क्या पता चला कि किसी के बारे में कोई राय कायम करने या वो इसको कोई सज़ा देने से पहले बात की तहकीक कर लेनी चाहिए। और जब तहकीक होती है आयत नंबर 36 से 40 में, तो ये पूरी स्टोरी है और आप सबको आती है, इसलिए मैं नहीं सुना रही, क्योंकि हमें कहानियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं। एंड पे बस हमें ये बड़ा फिक्र होता है कि मलका की शादी हुई कि ना हुई। एक तो फिल्मों से हमने यही सीखा कि एंड पे शादी हुई या फिर दोनों मर गए और उनकी रूहें आसमान पे जा गई। ऐसी बातों के लिए कुरान नहीं आया। बस आपको यही कहूँगी कि थोड़ा सा वक्त लगाइए, आयत 41 से 44 तक जाकर एंड होता है ये किस्सा। और आखिरी जुमले देख लीजिए, कालत रब्बी नी ज़लम तो नफसी वसलम तो मा सुलेमान अलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मलका सबा से शादी हुई कि नहीं हुई ये तो नहीं कुरान में पता, ना इसका तस्करा कुरान में ना हदीस में, ये पता चल गया कि मलका मुसलमान हो गई। सच्ची थी ना? आप देखिए मज़े की बात, आपके फ़ायदे का जुमला है, फिरौन के पास खुद मूसा आए जो नबी थे और फिरौन नहीं माना। मलका सबा के पास खत आया हुदहुद के ज़रिए और वो मान गए। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप होंगे तो लोग आएंगे और आप नहीं होंगे तो नहीं आएंगे। जिनको मानना होता है उनको मानना होता है, अल्लाह जिनके नसीब में कर देता है उनके लिए काम आसान होता है। और बस फिर अब पारे का एंड है। कौम समूद की बदबख्ती है 45 से 53 में, और उसके बाद कौम लूत की खबासत और उसका अंजाम है 54 से 58 में। अल्लाह मुख्तलिफ अंबिया और कौमों के किस्सों पे हमें बार बार तवज्जो दिलाते हैं। और आयत 59 में, अल्लाह बेहतर या माबूद आने बातिल, قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ। बड़ी प्यारी सी आयत है। और आप देखें कि अल्लाह पूछ रहे हैं कि सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं और सलामती है अल्लाह के उन बंदों पे जिनको उसने चुन लिया। इनसे पूछो कि अल्लाह बेहतर है या जिनको तुम माबूद बना रहे हो, तो सारे पारे का खुलासा भी यही है। अल्लाह का नबी जब तुम्हारे पास आता है तो उसकी कदर करो और अल्लाह के सिवा किसी को माबूद न बनाओ। सुभान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।